ఓ ఆదిగురు శంకరాచార్యజీ ద్వారా విరచిత్ వేదాంత డిండిమా నామక స్తోత్ర కే ఆధార్ పర్ వేదాంత విచార్ కర్ రహే హై. అభ్యాస్ కే లియే చౌథా శ్లోక్. జ్ఞాత్రీ జ్ఞేయ పదార్థౌ దౌ భాష్య భాసక లక్షణౌ జ్ఞాతా బ్రహ్మ జగత్ జ్ఞేయం ఇతి వేదాంత డిండిమా. సుఖ దుఃఖే పదార్థౌ దౌ ప్రియ విప్రియ కారకౌ సుఖం బ్రహ్మ జగద్ దుఃఖం ఇతి వేదాంత డిండిమా. సమష్టి వ్యష్టి రూపౌదౌ పదార్థౌ సర్వసమ్మతౌ సమష్టిరీశ్వరో వ్యష్టిర్ జీవో వేదాంత డిండిమః. జ్ఞాన కర్మ పదార్థౌ దౌ వస్తు కర్త్రాత్మా తంత్రకౌ జ్ఞానాన్ మోక్షోన కర్మభ్యః ఇతి వేదాంత డిండిమః. శ్రోతవ్యాశ్రవ్య రూపౌ దౌ పదార్థౌ సుఖ దుఃఖదౌ శ్రోతవ్యం బ్రహ్మ నైవాన్యత్ ఇతి వేదాంత డిండిమః. तो प्रसंग चल रहा है ज्ञात्री ज्ञेय पदार्थो दो. संसार में केवल दो पदार्थ हैं, दो वस्तु हैं, दो में से पहला वस्तु है जानने वाला, एक है जानने वाला, दूसरा है ज्ञेय. ज्ञेय का अर्थ होता है जाना जाने वाला. ये दो ही पदार्थ हैं. एक अन्य को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है. उसमें केवल जानना इतना धर्म है. ज्ञाता कि हमारे जैसा वो व्यक्ति नहीं है, हम दूसरों को तो खूब जानते हैं और अपने के बारे में कुछ पता नहीं है. दूसरे का हिसाब खूब रखते हैं. और अपने बारे में बेखबर है तो यूं कह सकते हैं आप यहां दो ही वर्ग में लिया, आप तीन वर्ग कर सकते हो। एक तो वो पदार्थ है न दूसरों को जानता है न अपने आप को जानता है, दूसरा है दूसरों को जानता है लेकिन अपने को जान नहीं जानता, और तीसरा है दूसरों को भी जानता है और खुद को भी जानता है। इन तीन में से ये फूल न अपने को जानता है न दूसरों को जानता है, हम लोग सामान्य भाषा में जड़ पदार्थ कह दिया करते हैं। सारे पदार्थ क्या हैं? जड़ हैं। वो अपने को भी नहीं जानते और दूसरों को भी नहीं जानते। दूसरा है दूसरों को जानता है अपने को नहीं जानता। वेदांत उसको जीव कह देते हैं। जीव दुनिया का हिसाब तो खूब जानता है, अपने बारे में उसको पता ही नहीं है। सब्जी में नमक है कि नहीं ये जानते हो कि नहीं? खाते समय नमक होगी तो तुम कहोगे नमक है, नमक नहीं होगी तो तुम कहोगे नमक नहीं है। अच्छा, सब्जी में नमक है या नहीं है ये तो तुम्हें पता चल गया जिह्वा के साथ लगाने पर। तुम्हारे में आनंद है कि नहीं ये तुम्हें पता है कि नहीं? है? तुम्हारे खुद में आनंद है, मुझ में आनंद है, ये तुम्हें पता है कि नहीं? यदि मुझ में आनंद है ये पता होता, तुम्हें पता लग गया होता, तो विद्यारण्य मुनि जी ने पंचदशी में कह दिया है फिर विषय की स्पृहा न होती। तुम्हें खुद अपने में आनंद है ये पता तुम्हें लगता तो फिर आम रस खाने के लिए हापुस आम खोजते हुए ग्रांड रोड न जाते। जब आनंद अपने पास है तो विषय के लिए तुम क्यों दौड़ते हो? तो यही प्रमाण है कि तुम अपने में क्या है ये तुमको पता नहीं। खुद अपने यदि मैं अभिकारी हूं ये पता लगता तो हॉस्पिटल के चक्कर न लगता। मैं नित्य हूं ये पता लगता तो मरने से डर न लगता। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, शंकराचार्य जी कहते हैं, दूसरे के बारे में जानकारी रखने वाला ये जीव खुद अपने बारे में जानकारी नहीं है। और तीसरा है, सभी को जानता है और खुद भी जानता है, अपने आप को भी जानता है। इसीलिए वह विषयों में आसक्त नहीं होता, विषय के प्रति दौड़ता नहीं है। यही संकेत कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। तो अपने आप को न जानने वाला भी ज्ञेय है। तो हमने तो थोड़ा तीन वर्ग कर दिया, लेकिन शंकराचार्य जी दो ही वर्ग कर रहे हैं। एक ज्ञेय है, दूसरा ज्ञाता है। एग्जाम्पल यूं समझ लो, मिरर के आगे तुम खड़े हो गए, तुम्हारी खुद तुम्हारी ही हूबहू प्रतिकृति मिरर के अंदर दिखाई पड़ा, जिसको वेदांत आभास कहता है। क्या दिखाई पड़ा? तो मनुष्य आभास है ना। मिरर के बाहर मनुष्य खड़ा होगा, तो मिरर के अंदर मनुष्य आभास खड़ा होगा। मनुष्य तो खड़ा नहीं होगा भाई, होगा? मिरर के अंदर मनुष्य तो खड़ा नहीं होगा, मनुष्य आभास खड़ा होगा, तुम्हारा प्रतिबिंब। तुम्हारे प्रतिबिंब का नाम क्या है? मनुष्य आभास। तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब मनुष्य आभास। मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य जैसा पशु जैसा दिखता है। तुम यदि दर्पण के आगे मिरर के आके खड़े हो जाओ, तो दर्पण के अंदर कुत्ता जैसा दिखता है, भैंस जैसा दिखता है, गधा जैसा दिखता है, कैसा दिखता है? तुम जैसे हो वैसे दिखता है। तो तुम मनुष्य हो तो वो मनुष्य दिखेगा, लेकिन दो मनुष्य तो हो नहीं सकते, इसलिए क्या हुआ? वो मनुष्य आभास हुआ। तुम अपने को भी जानते हो कि मैं मिरर के बाहर खड़ा हूं, कपड़ा पहनकर खड़ा हूं, और तुम तुम्हारा आभास को भी जानते हो कि मिरर के अंदर मेरा छाया, मेरी छाया, मेरा प्रतिबिंब, मेरा आभास खड़ा है। दोनों को जानते हो कि नहीं? दोनों को जानते हो, लेकिन उस मिरर के अंदर के मनुष्य आभास से पूछ लो कि तू मुझे जानता है कि नहीं, तो क्या बोलेगा वो? बोलेगा ही नहीं। तुम्हारे बोलने पर भी नहीं बोलेगा। हाँ, मनुष्य आभास मनुष्य को नहीं जानता, मनुष्य आभास मनुष्य को नहीं जानता, मनुष्य मनुष्य को भी जानता है, यानी अपने खुद को भी जानता है और आभास को भी जानता है। आभास मनुष्य को नहीं जानता और खुद को भी नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ? तो तीन वस्तु हो गए, एक वस्तु हो गया मिरर। मिरर खुद मनुष्य को नहीं जानता और खुद अपने को भी नहीं जानता और अपने में प्रतिबिंबित आभास को भी नहीं जानता। वो तीनों को नहीं जानता, इसलिए वो जड़ हो गया। और मनुष्य आभास भी न दर्पण को जानता है, न तुम्हें जानता है, न खुद को जानता है, इसलिए मनुष्य आभास भी जड़ ही है। लेकिन ऐसा लगता है देखते समय में कि वो मुझे देख रहा है, मैं उसको जान रहा हूं तो वो भी मुझे जान रहा है, ऐसा लगता है। मैं हाथ हिला रहा हूं तो वो भी हिलाता है। मैं पलकें झुमकाता हूं तो वो भी पलकें। मैं मुख हिलाता हूं तो वो भी मुख हिलाता है। मैं सिर हिलाता हूं तो वो भी सिर हिलाता है। लगता ऐसा है कि वो जिंदा है, तुम बता सकते हो? तुम मिरर के आगे खड़े हो जाओ, मिरर के अंदर जो दिखा हुआ है मनुष्य, वो जिंदा है कि मरा हुआ है? बोलो। मुर्दा है वो तो है नहीं, दिख रहा है। जो दिख रहा है उसको है नहीं कहोगे? लेकिन क्या वो जिंदा है? क्योंकि उसके अंदर प्राण भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अंतकरण नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। तो क्या है? पूरी तरह मुर्दा है वो। मिरर के अंदर का व्यक्ति मुर्दा है तो फिर जिंदा कौन है उसको देखने वाला? इसी को तो जीवन कहेंगे वो, और क्या कहेंगे? जीवन और क्या है? इसी को तो जीवन, जो मुर्दे को भी देखे उसी का नाम तो जीवन है, है? जीवन की परिभाषा और क्या करोगे? जीवन की परिभाषा तो यही है, जो जीवन को भी देखे और मुर्दे को भी देखे। वेदांत का अभ्यास यह है कि तुम मुर्दे को देख सको। हम लोग लाश देखते हैं लेकिन मुर्दे को नहीं देखते हैं, है ना? लाश देखते हैं, मुर्दे को नहीं देखते हैं। कुर्सी में बैठे हुए लाश दिख रहा है लेकिन मुर्दा नहीं दिख रहा है, जीवन दिख रहा है वो। ये दिखना जीवन देखना नहीं है। जीवन तो उसका जो तत्व है वो ज्ञाता। यदि ज्ञाता जानने वाला वो दिखाई पड़े तब तो फिर ये मानेंगे कि जीवन दिखाई पड़ा है। इसलिए बार बार हम कहते ही हैं कि आप, हम ये समझते हैं कि हमने स्वामी जी को देखा है, और वास्तव में स्वामी जी को तो किसी ने देखा ही नहीं है। स्वामी जी के शरीर को देखा है, तो स्वामी जी को देखने का मतलब क्या है? दृष्टा को जानना। दृष्टा को यदि जानोगे तभी स्वामी जी को देखोगे, और शरीर तो दृष्टा है ही नहीं, दृश्य है। और दृश्य को देखकर तुम कैसे कह रहे हो कि हमने स्वामी जी को जान लिया, देख लिया? लेकिन समाज में जो चल पड़ा वही चल जाता है, बस जो चल गया चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। तो शरीर को देखकर ही हमने आत्मा को देखा, ये कहने की परंपरा शुरू से ही मूर्खों ने जो चलाई है वही चल पड़ा है। हम तो यही कहेंगे, मूर्खों ने जो चलाई है वही चल पड़ा है। ज्ञातृ ज्ञेय पदार्थोदौ, यही बात यहां शंकराचार्य जी कहते हैं। तुम्हारे तीन शरीर हैं, तीनों शरीर ज्ञेय हैं। ज्ञेय माने ज्ञान का विषय, ज्ञान से प्रकाशित होने वाला ज्ञेय। जैसे ये फूल क्या है? प्रकाश्य। ये किससे प्रकाशित हुआ है? रोशनी से। तो रोशनी क्या हुआ? प्रकाशक। और पुष्प क्या हुआ? प्रकाश्य। रोशनी न हो तो पुष्प का पता नहीं चलेगा, पुष्प होने पर भी पुष्प का पता नहीं चलेगा रोशनी न हो तो। लेकिन ऐसा नहीं है, रोशनी को कोई और प्रकाशित करता हो ऐसा नहीं है, रोशनी होने पर रोशनी को कोई और प्रकाशित करता हो तभी रोशनी प्रकाशित होता हो, ऐसा नहीं। जैसे फूल होने पर भी रोशनी प्रकाशित करे तो प्रकाशित हो, नहीं तो नहीं हो। विद्यारण्य मुनि जी ने पंचदशी में स्पष्ट लिख दिया है। आप लोग जलेबी खाते हो, मालपुआ खाते हो, हलवा खाते हो, कैसा होता है जलेबी? जलेबी यदि मीठा हुआ है तो उसको मीठापना किसने दिया? जलेबी का अपना स्वभाव तो है ही नहीं। जब वो तेल से फ्राई करके तेल से निकालते थे तब मीठा था क्या? है? जब मैदा से बनाकर तेल में पकाकर जब निकाले तब तो मीठा नहीं था वो। उसमें मधुरता किसने दी? शक्कर ने दी, चीनी ने दिया। चीनी ने अपने मधुरता जलेबी को दिया तभी जलेबी मधुर हुई, है ना? अन्य ने दिया तब। अब ये तो ठीक है कि जलेबी को चीनी ने अपने मधुरता दी तो जलेबी मधुर यानी मीठा हुआ, तो चीनी को मधुरता किसने दिया? प्रश्न ये हुआ है, चीनी को किसने दिया मधुरता, मीठापना चीनी को किसने दिया? चीनी खुद भी मीठा होने के कारण वो स्वभाव है, उसको मीठा होने के लिए किसी अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं है। जलेबी को मीठा होने के लिए चीनी की कृपा की आवश्यकता है, समझे कि नहीं? वैकुंठ जाने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, तुम अपने पुरुषार्थ नहीं जा सकते हो, ये सच्ची बात कह रहा हूं मैं। वैकुंठ जाने के लिए, मरने के बाद कहां जाना चाहते हो? वैकुंठ? तो भगवान की कृपा चाहिए, उसके कृपा के बिना वैकुंठ नहीं जा पाओगे। हैं? हम बताए जा रहे हैं, हम बताएंगे। तो लेकिन वो वैकुंठ भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें खुद भगवान बनना हो तो भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है। क्या समझे? बोलो। वैकुंठ जाना हो तो भगवान की कृपा की जरूरत है, लेकिन तुमको खुद भगवान बनना हो तो भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी साधना, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा निश्चय तुमको भगवान बना देगा। भगवत्ता तुम्हारे ब्रह्मरूपता, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्मरूपता ये किसी की कृपा से होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है। क्योंकि वैकुंठ तुम्हारा स्वरूप नहीं है इसलिए अन्य की कृपा चाहिए। तो ये हम बता रहे थे, हम ये वेदांत का है, ये सिद्धांत है, वेदांत यही तो है। इसीलिए चीनी को मधुर होने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ब्रह्म बनने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर है कि उपाय बताएंगे और की कृपा से, केवल तुम्हें उपाय बता दिया जाएगा, और की कृपा से तुम ब्रह्म नहीं होगे। क्योंकि ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, तुम ब्रह्म तो है ही हो। यहां मुक्त व्यक्ति का ही मुक्ति का प्रसंग है वेदांत। जो स्वरूप से मुक्त है उसको बंधन तो है ही नहीं, बंधन है ही नहीं लेकिन बंधन मान रखा है तो करोगे क्या? जीव है नहीं लेकिन मैं जीव हूं करके मान रखा है, भ्रांति से कुछ भी हो सकता है। तुम ये कह सकते हो कि जब ब्रह्म ही है तो जीव जीव ये कहां से आ गया? वेदांत के पास एक ही उत्तर है कि भ्रांति से जीवपना आ गया है। और जो भ्रांति से वस्तु सिद्ध करते हो होता है वो वस्तु वास्तव में सिद्ध होता ही नहीं है। बहुत बार उदाहरण दी गई है, किसी हीरे के टुकड़े को हीरे के महत्व को न जानने वाला भ्रम से कांच के टुकड़ों के संस्कार के चलते उसको कांच का टुकड़ा कह देता है तो क्या वह उसके कहने मात्र से कांच बन जाएगा? लेकिन वो स्वर मान रहा है कि वो कांच है, कांच करके कांचे के व्यवहार कर रहा है। और हीरे को कांच मानकर कांच का व्यवहार कर रहा है तो तुम हम उसको ये कहेंगे कि वो मूर्ख है, उल्लू है। तब ब्रह्म होते हुए भी अपने को जीव मानकर कर्ता भोक्ता का व्यवहार कर रहे हो तो तुम भले ही कर्ता भोक्ता का व्यवहार कर लो लेकिन हमारे जैसे कोई व्यक्ति तो तुम्हें उल्लू ही कहेगा। क्या कहेगा? वेदांत के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति तो, ज्ञानी तो, गुरु तो उल्लू ही कहेगा। भाई हो ब्रह्म, हो आत्मा, हो चैतन्य, हो ज्ञाता। और खुद ज्ञाता होते हुए भी तुम जानने के लिए घूमते फिरते हो। किसको? जो ज्ञाता ज्ञेय नहीं होता, ज्ञेय ज्ञाता नहीं होता, ये हमने पहले भी कहा था, हम इसे ही कहते हैं। ज्ञेय हमेशा ज्ञेय रहेगा, ज्ञाता हमेशा ज्ञाता ही रहेगा। लेकिन हम ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किस रूप से जानने के लिए? अड़चन यहीं पर है। अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये बात गलत नहीं है। लेकिन किस रूप में जानने के लिए? बोले ज्ञाता के रूप में जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न कि ज्ञेय के रूप में। यदि हम अपने बुद्धि से ब्रह्म को जानते हैं तो वो ब्रह्म क्या हो जाएगा? ज्ञेय हो जाएगा। और जो ज्ञेय बन जाता है, ज्ञान का विषय बन जाता है, वो हमेशा जड़ होगा, अनात्मा होगा, फिर वो ब्रह्म ब्रह्म ही नहीं रहेगा। ज्ञेय बन गया कि वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा, वो ब्रह्म क्या रहेगा? फिर वो जगत हो जाएगा। और जगत तो है ही है, जगत तो ज्ञेय है ही है। और जो ज्ञेय रूप जगत है वो ब्रह्म ही जगत बना हुआ है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो नहीं भिन्न तनु, जगत नहीं भिन्न तनु। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ज्ञात्री ज्ञेय पदार्थोदौ क्रम से भाष्य भाषक लक्षणौ, ज्ञात्री भाषक ज्ञेय भाष्य, भाष्य माने भा का विषय, प्रकाश का विषय, भा माने प्रकाश, भात प्रभात, किसको कहते हो? प्रभात, उस अवस्था को प्रभात कहोगे जिस अवस्था में रोशनी चारों तरफ फैली हुई होगी। तो भा माने प्रकाश, आभा प्रकाश, तो भाष्य भाषक, भाष्य माने प्रकाश्य, इसका नाम क्या है? भाष्य। इसका दूसरा नाम क्या है? पहला नाम ज्ञेय, इसी श्लोक में दूसरा नाम क्या हुआ? भाष्य। और तुम्हारा नाम क्या हुआ? पहला नाम ज्ञाता, दूसरा नाम क्या हुआ? भाषक। और जो भाषक होता है वही नाशक होता है, है? भाषक क्या होता है? नाशक होता है। किसका? अज्ञान का। अज्ञान का नाशक होता है कौन? भाषक। अज्ञान को नाशक जब तक अज्ञान का नाश नहीं करेगा तब तक पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा? भाषक नाशक। तो तुम्हारा नाम क्या है? ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब भाषक, भाषक का मतलब नाशक। जो देखो उसी का सत्यानाश करते हो। कितना बढ़िया आम लेके आते हो, उसको मसल मसल के कचुम्बर बना के है फजीता ही निकाल के पी जाते हो। फजी तो बनाते हो कि नहीं बोलो? और नाशक रस बनाए तो उसका सत्यानाश, पी लिया। छिलका बचा था उसको भी धो धा के पानी डाल के फजी तो सब नाशक। तुम्हारे हाथ में आने के बाद कोई वस्तु बची है? टमाटर नहीं बची है, गाजर नहीं बचा है, मूली नहीं बची है, पालक नहीं बचा है, लौकी दुधी नहीं बची है, सब नाश सत्यानाश है, नाशक। क्योंकि कारण का ही तुम नाश करता हो, मूला विद्या का ही तुम चाहो तो नाश कर सकते हो, इसलिए तुम नाशक। और तुम्हारे अलावा दूसरा तो मूला विद्या का नाश करेगा नहीं, करेगा? जो भाषक होगा वही मूला विद्या का नाशक होगा, है? अब यही है कि खंडाकार वृत्ति से, है? खंडाकार वृत्ति से तुला विद्या का नाशक बन जाओगे, अखंडाकार वृत्ति से मूला विद्या का नाशक बन जाओगे। तुम हो तो नाशक ही हो, है? खंडाकार वृत्ति, तुम्हारी वृत्ति खंडित 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 होती रहती है, नया नया है टुकड़े टुकड़े में बढ़ती है, तो तुम तुला विद्या के नाशक बनोगे। तुला विद्या माने कार्य अविद्या, एक एक कार्य का अज्ञान को नाशक बनोगे तुम। और वही वृत्ति अखंडाकार बनी तो कारण अविद्या का नाशक बन जाओगे, और जहां कारण अविद्या का नाश बन गया उसके बाद ना कोई भाष्य रहेगा न कोई भाषक रहेगा, फिर उसके बाद भाषक भी नहीं रहेगा। भाषक का ये क्रिया विशेषण नहीं रहेगा फिर, है ना? नाशक ये क्रिया विशेषण नहीं रहेगा, क्योंकि नाश करने के लिए कुछ रहा नहीं, तो फिर नाशक का क्रिया विशेषण भी नहीं, क्या होगा? केवल भा रूप होगा, भाषक का नहीं होगा। फिर ज्ञाता नहीं होगा, ज्ञान रूप होगा। ज्ञाता नहीं होगा, ज्ञान रूप होगा। ज्ञात्री गेय पदार्थौ दौ भाष्य भाषकरु लक्षणौ। ज्ञाता कौन है? भाषक कौन है? ज्ञाता ब्रह्मा। ज्ञाता कौन है? तुम कौन हो? जीव। ज्ञाता ब्रह्म, फूल को जाना कि नहीं तुमने? तो क्या हो गए तुम? क्यों रोते फिरते हो? फूल को जाना कि नहीं तुमने, बोलो ना। ज्ञाता ब्रह्म, फूल को जाना कि नहीं? तो तुम क्या हो गए? क्यों रोते फिरते हो? ब्रह्म हूं कहते हो फिर भी रोते फिरते हो? ब्रह्म कहीं रोता फिरता है? और यहां सिद्ध हो रहा है कि तुम ब्रह्म हो, क्योंकि जाता हो, जान रहे हो। या तो ये कहो कि मैं नहीं जानता हूं, क्या है पता नहीं। कोई और दूसरे लोग जाने तो जाने, मैं नहीं जानता हूं। ज्ञाता ब्रह्म जगत ज्ञेय। जो ज्ञेय होगा वो जगत होगा। जो ज्ञेय होगा, ज्ञान का विषय होगा, वो जगत होगा, वो संसार होगा। फिर वह जड़ होगा। ज्ञेय जो होगा वो जड़ होगा, चैतन्य नहीं होगा। जगत ज्ञेय, जगत के अंतर्गत क्या आ गया? आभास से लेकर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और उसमें बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास और उसका भी कारण तन्मात्राएं, अहंकार, महतत्व, अव्यक्त। तो अव्यक्त से लेकर ये फूल तक ये सब क्या हो गया? जगत है। क्योंकि अव्यक्त को भी प्रकाशित करने वाला ब्रह्म है और वह भाषक है, प्रकाशक है। अन्यथा अव्यक्त को कौन जानेगा, कौन बताएगा कि अव्यक्त तो जड़ है? तो ये सब क्या हुआ? जगत। विचार करने पर सब अस्तित्व से, स्वरूप से ही चले जाएंगे, इसलिए जगत। अव्यक्त भी चला जाएगा, इसलिए अनादि शांत। छह अनादि हैं, छह अनादि में से एक ही अनादि अनंत है, बाकी पांच अनादि शांत है। अव्यक्त भी शांत है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद वो अव्यक्त ही यानी माया या विद्या नष्ट हो जाने के कारण उसको शांत कहेंगे। नष्ट होगा तो ज्ञान होने के बाद, लेकिन आया कब? अज्ञान आया कब? बोलो, न जानने के बाद अज्ञान आया? न जानने का नाम ही अज्ञान है। तो न जानने के बाद अज्ञान आया, ऐसा तो कहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अज्ञान के चलते नहीं जानना बना है, लेकिन न जानने के बाद अज्ञान आया, ऐसा नहीं है। तो अज्ञान आया कब? तो अनादि। हां, ये जरूर है कि वो अज्ञान जाएगा कब? ज्ञान होने के बाद अज्ञान जाएगा, इसलिए अनादि शांत। तो अव्यक्त भी अनादि शांत है, उसका तमाम कार्य सभी ही अनादि शांत हैं, और एक ब्रह्म ही अनादि अनंत है। उसको भी शांत मान लो, कुछ लोगों ने कहा तो उसको भी शांत मान लो। यदि उसको भी शांत मानेंगे तो वह शांत हुआ ये जानेगा कौन है? ब्रह्म को भी माया की तरह अविद्या की तरह ही अनादि शांत मान लो तो हर्जा क्या है? बोले हर्जा तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्रह्म भी शांत हो गया इसको जानेगा, प्रमाणित करेगा कौन? और साक्षी के अभाव में ब्रह्म शांत हो गया ये सिद्ध ही नहीं होगा। साक्षी चाहिए, साक्षी के अभाव में साक्षी खुद मर गया तो साक्षी खुद मर गया ये बात सिद्ध करेगा कौन? साक्षी के असाक्षी बोलो। और तुम जिसको साक्षी के रूप में खड़ा करोगे वही ब्रह्म हो जाएगा। तो ब्रह्म शांत नहीं, ब्रह्म का अंत नहीं हो सकता है, साक्षी का अंत नहीं हो सकता है, ज्ञाता का अंत नहीं हो सकता। किसका? ज्ञेय का अंत हो सकता है, ज्ञेय के होने पना को जानना ज्ञाता जानेगा और ज्ञेय के न होने पना को जानेगा ज्ञाता जानेगा, ज्ञेय के भाव और अभाव दोनों को ज्ञाता जानेगा। बोले ज्ञाता का भी अभाव मान लो, जैसे ज्ञेय का अभाव मानते हो ज्ञाता का भी अभाव मान लो, सर्वम शून्यम। तो मानने में आपत्ति तो नहीं है, लेकिन ज्ञाता का अभाव हो गया सिद्ध करेगा कौन फिर? इतनी समस्या है। इसलिए साक्षी को अभाव रूप मान ही नहीं सकते, साक्षी का विनाश नहीं होगा, एक व्यक्ति तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। बोलो, संसार के सभी मर गए प्राणी ये कहने के लिए एक प्राणी तो जिंदा रहना पड़ेगा कि नहीं है? बोलो, तो जो जिंदा रहेगा वो मरेगा कि, जो जानेगा वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? तो यही कह रहे हैं ना यहां, ज्ञात्री ज्ञेय पदार्थ दौ भाष्य भाषक रूपिण ज्ञाता ब्रह्म जगत ज्ञेयम इति वेदांत डिंडिमा। ये वेदांत का घोष है, उद्घोष है, नगाड़ा पीट पीट कर वेदांत कह रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई हो तो न सुने, कान वाले हो तब न सुने, सब दुकान वाले हैं कान वाले कोई नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।